अल्लाह के नबी ने गिव अप करने की बजाय या बस कह दिया जी ठीक है ना, मैंने जो करना था कर लिया, हिम्मत नहीं हो रही, अब नहीं करते, आपने सोचा कि ताइफ चलते हैं। ताइफ क्या है? मक्का से तकरीबन 2-2.5 घंटे की दूरी पर एक शहर, पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आप मरी या सवात को समझ लें, इस्लामाबाद से जब आप मरी की तरफ जाते हैं पहाड़ी इलाके होते हैं। अरब लोग वहाँ गर्मियाँ गुजारने जाते थे और मक्का के जो सरदार थे उनके वहाँ बंगले थे, यानी उन्होंने अपने घर बनाए हुए थे, जैसे अमीर लोगों के रिजॉर्ट्स और इस तरह से घर होते हैं, वहाँ जाके वो सफ़र करते थे। और अल्लाह के नबी को लगा कि शायद वो लोग मेरी बात मान ले। आप हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के साथ पैदल चले, हाईलाइट करिएगा ज़रा, मक्का से ताइफ पैदल चले, जिस जिस कबीले से रास्ते में गुजर होता उसको इस्लाम की दावत देते। इससे क्या पता चलता है? आप एक टारगेट लेके गए हैं ना, तो वहाँ तक पहुँचने से पहले रास्ते में जो लोग मिले उनको भी दावत दीजिए। यानी आप गई किसी जगह के, चलो मैं अपने एक दोस्त को इस कोर्स की दावत देती हूँ, ट्रेन में आपको 2-3 और पाकिस्तानी मुसलमान बहनें मिल गईं, उनको भी दावत दे दीजिए। क्या बड़ी बात है कि दोस्त ना माने और ये मान जाए। ताइफ में 3 बड़े कबीले थे, सकीफ से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कबीला सकीफ के 3 सरदार थे जो आपस में भाई भी थे। आपने सोचा कि उनको दावत देता हूँ, क्यों? क्योंकि अन्नास वला दीन ही मलूकिहिम। यहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत तबलीग का नुक्ता निकलता है कि बड़े लोगों तक अप्रोच कर सकें तो करें। बड़े से मुराद जाएँ कि इन्फ्लुएंशियल पीपल, ट्रेंड सेटर्स, लीडर, सियासी लीडर, गुलूकार, अदाकार, जिनको लोग पसंद करते हैं। अगर उनमें से एक बंदा संभल गया ना, तो उसके सारे फैन और उसके फॉलोअर्स खुद भी मान जाएंगे। छोटे छोटे लोगों से बात करें वो समझ भी जाते हैं, लेकिन बाद दफ़ा पीयर प्रेशर में आके अमल नहीं करते। तो सरदारों के पास अब गए, इस्लाम की दावत दी और मदद चाही कि तबलीग करने पर मेरी मदद की जाए। लेकिन ना सिर्फ ये कि उन्होंने इस दावत को रिजेक्ट किया, बुरा जवाब दिया और इनको बुरा भला कहा, बहुत बुरे तरीके से उनके साथ बात करने की। यानी वजह क्या थी? दौलत, तकब्बुर। ऐसे लोग कहते हैं मौलवी आ गए, इसको रुख्सत कर दो, रोटी दे दो, इसको खाना खिला दो। 10 दिन अल्लाह के नबी वहाँ बातें करते रहे, कोई ना माना। बिलाखिर उन्होंने कहा कि हमारे शहर से निकल जाओ, ओबाश लड़के और ग़ुलामों को शह दी कि इसके पीछे लग जाओ। कभी सोचिए, पत्थर मारते थे लड़के आपको। वापसी का जब आपने इरादा किया तो आपके दोनों तरफ लाइनों में खड़े होकर इन लोगों ने गालियाँ देनी और बदजुबानी करनी शुरू की, पत्थर बरसाए, आपकी एड़ियाँ और पाँव जख्मी हो गए, जूते खून से तर हो गए। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा जो आपको बचा रहे थे उनके अपने सर पर ज़ख्म आए। ये सिलसिला काफ़ी देर तक जारी रहा, हत्ता कि आपको अपनी जान बचाने के लिए उतबा और शैबा जो रबिया के बेटे थे इनके बाग में पनाह लेनी पड़ी। ताइफ से तकरीबन 3 मील के फासले पर यह जगह। जब आप इस बाग में दाखिल हुए तो भीड़ वापस चली गई। आप क्या कहेंगे इस पे? पत्थर और क्या कुछ। आज जब भी कभी किसी दावा ट्रिप पे जाएं तो मुझे ये सफ़रे ताइफ बड़ा याद आता है, दिल भर जाता है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला नबी का ईमान और उनका तकवा और इखलास, उसका क्या तकाबुल हमारे साथ, पाँव की जूती के बराबर भी नहीं। हम जैसे गुनाहगार जब जाते हैं तो चले, जो लोग दीन से मोहब्बत करते हैं वो कितनी इज्जत और मोहब्बत करते हैं, लेकिन तेरे नबी के साथ क्या मामला हुआ? और आप कहीं जाए और आपका पुरतपाक इस्तकबाल हो ना, तो दोबारा जाना आसान होता है। आप कहते चलते हैं, एक दफ़ा पहले भी गए थे, अच्छा रहा। और अगर ये सलूक हो तो क्या उसके बाद आप दीन की दावत दे सकते हैं? हम कहेंगे आज से छुट्टी। बस जी, आप मैंने नहीं कभी बताना। आप बड़े तपाक से अपने किसी रिश्तेदार को बताने की कोशिश करते हैं ना, और अगर उस पर कोई आपका अच्छा जवाब ना दे तो आप उस पर भी दिल मैला करके आ जाते हैं। आप एक बाग के अंदर आए, दीवार को टेक लगाई, अंगूर की बेल के साए में बैठ के, दिल दुखी था। एक ऐसी दुआ आपके दिल से निकली, ज़ुबान पर आ गई कि जिसको दुआए मुस्तद अफीन के नाम से मशहूर कर दिया गया। दुआए ताइफ भी इसको कहते हैं, दुआए मुस्तदफीन। एक एक लफ्ज़ को सुनते वक्त आप ज़रा अपना भी जायज़ा लें कि अल्लाह के नबी उस वक्त क्या महसूस करते थे। सच्ची मोहब्बत नबी की महसूस करनी है ना, तो इन तल्ख तजुर्बात को सामने रखें कि आपके साथ इस दीन को फैलाने में क्या क्या सलूक हुआ। दुआ के अल्फाज कुछ इस तरह से हैं, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कुदा फ़क़ुव्वती, ए अल्लाह मैं तुझसे अपनी कमज़ोरी और बेबसी का शिकवा करता हूँ, अश्कु शिकवा से, वक़िल्लत हीलती और मेरे पास कोई हीला नहीं है, असबाब नहीं है, मैनर्स नहीं है, वह हवानी अलन्नास और लोगों पर मैं बड़ा ही बेकदरा हो गया हूँ, यानी लोग मेरी नाकदरी कर रहे हैं, यार हमर राहमीन ए बहुत रहम करने वाले, अंत रब्बुल मुस्तदअफीन तू तो कमज़ोरों का रब है, वह अंत रब्बी और तू मेरा भी रब है, इला मन तकिलुनी तू मुझे किसके हवाले कर रहा है, इला बईदिन एक गैर और बेगाने के हवाले के, यतजहमुनी जो मेरे साथ जहालत बरतेगा, अमिला अदुवन या तू मेरे दुश्मन के हवाले मुझे करता है, मलकतहु अमरी यानी मेरे काम को मेरे दुश्मन के हवाले करता है, इल्लम यकुम बिका अलैय गदबुन चलो कोई बात नहीं अगर फिर भी ये तेरा मुझ पर गुस्सा नहीं है तो फला उबाली मुझे कोई परवाह नहीं, यानी ये सब गवारा है अगर मुझे पता चल जाए कि ये तू मेरे पे नाराज़ नहीं है बल्कि तेरे दीन के कामों के रास्ते में ये तकलीफ़ें आ रही हैं फिर कोई बड़ी बात नहीं, वलाकिन आफियतुका ही औसौली लेकिन तेरी आफियत मेरे लिए ज़्यादा कुशादा है, यानी अगर फिर भी तू मुझे माफ़ ही कर दे आफियत ही दे दे तो बेहतर है, आउज़ु बिनूरी वच्छी कल्लज़ी अशरकत लहु ज़ुलुमात मैं तेरे चेहरे के उस नूर की पनाह चाहता हूँ जिससे तारीकियाँ रोशन होती हैं, वसलह अलैहि अमरुद्दुनिया वल आखिरा और जिस पर दुनिया और आखरत के मामला दुरुस्त हुए, क्या मिन ऐं यन्ज़िला बी गदबुक कि तू मुझ पर अपना गज़ब नाजिल कर, औ यहिल अलैया सख़तुक या तेरा मुझ पर गुस्सा नाजिल हो, लकल उतबा तेरी रज़ा मतलूब है, हत्ता तरदा यहाँ तक के तू राज़ी हो जाए, वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिक और तेरे सिवा कोई ज़ोर और ताकत नहीं है। एक एक लफ्ज़ में आपको आंसू दिखते, कितनी बेकदरी कितनी नाफरमानी। मैं सोचती हूँ कि ये सिर्फ ताइफ़ वालों के हालात नहीं थे, अगर आज मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और आपके तौर तरीक़ों से जो रवैये इख्तियार करते हैं ना उनकी अल्लाह के नबी को ख़बर भी मिल जाए ना कानों कान भिनक तो इससे ज़्यादा दुखी होंगे आप। कमज़ोरी बेबसी लोगों के नज़दीक बेकदरी शिकवे किससे करने हैं, अल्लाह से करने हैं। आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारसा से शिकवा नहीं किया, उनको बैठ के नहीं सुनाया देखो मेरे साथ क्या हुआ क्या हुआ ये हुआ, अल्लाह से बात की। क्यों? इसलिए कि जिसकी अल्लाह से डायरेक्ट डायलिंग हो जाए उसको किसी दूसरे से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ह्यूमन नेचर है, हम सब एक सवाल पूछते हैं कि अच्छा क्या मैं अपने दुख सुख अपनी दोस्त से तो कर सकती हूँ ना। कई लोग ये मसला पूछते हैं कि मिसाल है शौहर की बुराई नहीं कर सकते लेकिन बस मेरी एक गहरी दोस्त है फिर मैं उससे पूछ लेती हूँ, फिर मैं क्या वो भी गीबत है, या मेरी सास जुल्म करती हैं या सख्त मिजाज की हैं तो फिर शौहर से उनकी बात कर लूँ तो क्या ये भी गीबत है, या बच्चे सताते हैं दुखी करते हैं तो क्या फिर मैं अपने शौहर से उसकी शिकायत भी ना लगाऊं। तो यहाँ उसका जवाब है, करें, अल्लाह ने हक दिया आपको, बस एक ज़ात से आप बात कर सकते हैं हर शिकवे का, अपने बेस्ट फ्रेंड से जिससे आप दिल की गहराई से मोहब्बत करें, अपने हर रिश्ते हर गम की शिकायत लगा सकते हैं और वो ज़ात आपका रब है। ये जो शौहर का बीच में नाम आ जाता है ना इसका मतलब है कि अल्लाह से ज़्यादा शौहर दोस्त है, और भाई बहन और दोस्तों का भी यही मामला है। आप सब रिश्तों के नाम लिख के सोचें जो मैंने अभी शेयर किए, सास का सदमा दुख आप शौहर से शेयर करते हैं, क्या करेंगे शौहर? अगर बोलने भी लगेंगे ना आपके हक में तो फिर आप नहीं रोक लेना, बाहर जाके बात ना करिएगा, फिर कल मेरी और सख्ती आएगी कि इसको इसने सिखा पढ़ा के भेजा, तो कहते फिर मुझे क्यों बताया, खुद नहीं मैंने दिल हल्का किया, तो आपने दिल हल्का किया उसका तो भारी हो गया ना। अब वो हल्का करते हुए जब माँ के आगे बोलेगा हो सकता है बदतमीजी करे, इससे तो बहुत बेहतर था आप अपनी सास को खुद निपट लें। और मैं आप सबको कहूँगी जिसको साथ से कोई इशू है ना खुद निपटें, सामने बैठ के प्यार से निपटें, गुस्से से गले में लिपट कर, या बोलना है शौहर को बीच में ना लाएं, क्योंकि वो आपके शौहर की माँ है और उसकी जन्नत है, वो या तो फिर जहन्नमी हो जाएगा या फिर आपकी नज़रों से गिर जाएगा। जिसको ये यकीन है ना कि जिसको भी बताया उसने कर क्या सकना है, दुखी होगा और कभी गुस्से में आएगा, कभी जलेगा, आखिर उसने भी आपको यही कहना है ना, सब्र करो। तो आप अल्लाह से कह लीजिए, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कु दाफा कुव्वती। जिनको अल्लाह से बात करने की आदत हो जाती है ना, वो बंदों से नहीं करते, वो कहते हैं सॉरी मुझे नहीं ज़रूरत, मेरा रब है तो वो बात करे। खैर देखिए, जब अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह रास्ते कैसे खोलता है। रबिया के बेटों ने जब आपको इस हालत में देखा तो तरस आ गया। अपने एक ईसाई ग़ुलाम उदास, उसका नाम था, अदास भी कहते हैं और उदास, आइन पेश भी और ज़बर भी, इसके हाथ अंगूर का खोशा भेजा। नबी सल्लम ने पकड़ा और बिस्मिल्लाह कहकर ले लिया। जूँ ही उस शख्स ने यह कलमा सुना तो कहने लगा कि इस इलाके के लोग तो बिस्मिल्लाह नहीं बोलते। आपने कहा कि तुम किस इलाके से हो और तुम्हारा दीन क्या है? कहने लगा कि मैं नसरानी हूँ और नैनवा बस्ती का रहने वाला हूँ। जो ही उसने नैनवा का नाम लिया तो अल्लाह के नबी ने कहा, अच्छा मर्दे सवाले यूनुस बिन मती की बस्ती से। कहने लगा, आपको पता है यूनुस कौन है? तो अल्लाह के नबी ने कहा, वो मेरे भाई हैं, वो भी नबी थे, मैं भी नबी हूँ। और कहते हैं कि कुरान पाक में से यूनुस बिन मती की जो कहानी है या उनका वाक्य है, आपने उसकी तिलावत की, बस आपकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ सुनने थे कि वो शख्स मुसलमान हो गया। यहाँ आप देखिए, अब छोटी सी बात अमल की है, बहुत बड़े अमल की है जो मुसलमानों के लिए। अगर अल्लाह के नबी अंगूर पकड़ते हुए बिस्मिल्लाह ना पढ़ते तो अदास को अल्लाह के नबी के बारे में पता चलता, ये सारी कन्वर्सेशन फिर होनी थी। यहाँ से देखिए कि मुसलमान जब अपने रिचुअल्स नहीं छोड़ते ना, तो दूसरे लोगों को दीन की दावत देते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आज हम मुसलमान, जिनको अल्लाह ने छोटी छोटी बातें सिखाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अगर हमें इसकी बिल्कुल नेचुरली आदत हो, ये नहीं कि अब एग्जेजरेट करें, हमारा हाल क्या कि दीनदारों में बैठते हैं तो फिर अस्तग़फिरुल्लाह और कभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम और अपनों में तो हाय बाय शाय, और जहाँ ज़रा कोई नॉन मुस्लिम से इंटरेक्टिव हो तो मुंह के ऊपर ये अल्फाज तो छोड़ दीजिए, हुलिया भी बदल के जाते हैं कि अब क्या बताएं कि मुसलमान है, शर्म आएगी। हालांकि आप देखिए, ये है खामोश तबलीग। अगर ये लोग हमें उठते बैठते ये सारी बातें करते देखे तो खुद पूछेंगे। एक सिस्टर की बात मैंने सुनी कि वो डॉक्टर पे गई तो डॉक्टर पूछते रहे, ये बीमारी आपको है? इसने कहा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी, ये भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ये फील होता नहीं। कहने लगा, ये अल्हम्दुलिल्लाह क्या होता है? गोरा था वो, फिर मौका मिल गया, रास्ता खुल गया। देखिए मुसलमान तो रास्ता ढूंढता है। आपको जब भी मौका मिले कहीं भी, मिसाल आपको सिर्फ अमल के लिए, कोई बड़ाई की आदत नहीं ना मुझे ज़रूरत है आपकी नज़रों में बड़ा बनने की, तो लेकिन जब भी एयरपोर्ट्स पे कभी हम हो और कहीं भी, ज़ाहिर आपको आता है ना कि कॉन्वर्सेशंस होती हैं, तो मेरा फेवरेट टॉपिक उस वक्त उनसे जो भी औरतें होती हैं बात करें, वो स्कैनिंग करती हैं जैसे होता है ना, या वो मसाज करती हैं, एक तो मैं उनको ये कहती हूँ कि इट्स वेरी गुड मसाज, आपको पता है मैं बहुत थकी हुई थी, तो वो सब कुछ चेक करते हैं जो वो करना है। दूसरा, उस वक्त मैं फिर उनको जो फीलिंग देती हूँ वो ये देती हूँ कि देखें, एक हिस्से से निकल कर हम दूसरे मुल्क में जा रहे हैं तो कितने सख्त सिक्योरिटी चेक्स हैं, तो जब हम इस दुनिया से निकल कर दूसरे में जाएंगे तो गॉड के कितने होंगे, ओह बाय गॉड प्लीज हो गए, यानी वो एकदम हिल जाती हैं, क्योंकि आखिरत को किसी ना किसी हद तक तो हर एक मानता ही है ना, तो हमेशा मौका देखा करें। राह जाते चलते, पुलिस के रोकते, इधर उधर गाड़ियों में बैठते, इससे इंशाल्लाह तबलीग के दरवाज़े खुलते जाएंगे। बहरहाल अल्लाह के नबी बाग से निकले, मक्का की तरफ चले, दुखी भी थे, क्योंकि एक तो दुख, देखिए सफ़र, आपको मैं अगर छोटी सी एक्टिविटी दे दूँ ना तो आप परेशान हो जाए। आप मक्का से ताइफ के किलोमीटर्स सर्च करके लाएं वेबसाइट से, और उसका मुख्तलिफ ज़रिए से पहुँचने का टाइम नोट करके लाएं, कल बताइएगा मुझे। जहाज़ में जाएं तो कितना, गाड़ी में जाएं, बस पे जाएं, ट्रेन पे, और उसको असेस कीजिएगा पैदल। मैं खुद जा चुकी हूँ, बेहतरीन गाड़ियों में 2.5 घंटे लगते, कितने किलोमीटर हैं यह अब आप कल बताएंगे। हम इतना जा सकते हैं? हम तो कहते नहीं जी, दूर जाना है, हम नहीं जा, मोस्ट जाना है, कोई नहीं जा सकता, आप अकेले जाएं संडे को, हम नहीं जा सकते। और भ्रमण जाना है, नामुमकिन है, नहीं नहीं जा सकते, इधर जाएं उधर जाएं नामुमकिन है। हम करीब के सफ़र आसानी से सहते हैं, और जहाँ अच्छी भी था, और यहाँ देखिए इतने दूर आए तो मिला क्या, क्या अल्लाह के नबी का ये सफ़र नाकाम हुआ? कोई भी तो मुसलमान नहीं हुआ, उदास हो गया। एक शख्स मुसलमान हो गया और अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर तेरे ज़रिए से किसी एक बंदे को हिदायत मिल जाए तो तेरे हक़ में सुर्ख ऊँटों के मिलने से ज़्यादा बड़ी नेमत है ये। तो मत सोचे कि आपको 100 लोगों ने वेलकम नहीं किया तो आपका ट्रिप बेकार है। बाज़ यकीन करें, सिर्फ एक बंदा, अगली दफ़ा किसी भी शहर में जाऊँ, ट्रिप्स बहुत सारे होते हैं अल्लाह के हुक्म से, कभी किसी शहर में जाऊँ और कोई एक सिस्टर आती हैं, और अक्सर ऐसा होता है, जो आके कहती हैं आपके उस लास्ट दर्स पे मैं जब आई थी उसके बाद से मैंने नमाज़ नहीं छोड़ी। कोई कहता है उसके बाद हिजाब कर लिए, कोई कहता है उसके बाद कुरान की क्लासेस से जुड़ गए, तो मेरा सीना ठंडा हो जाता है। मैं नॉर्वे आने को भी आप में से कुछ लोगों का नाम जहन में लेके सोचती हूँ, एक भी सारे जितने लोग हैं इधर माशाल्लाह उनसे फ़ायदा नहीं, कोई एक फलां मेरे आने से अगर उसको फ़ायदा हो गया ना तो मेरा ये ट्रिप कामयाब है। यकीन करें, मैं अपने दिल को अकेले में बैठ के तसल्लियाँ देती हूँ कि चलो अगर मैं ना आती या मैं यहाँ ना रहती तो ये एक तक हिदायत का ज़रिया नहीं गया था ना, मेरे ज़रिए गया ना, बस मेरे लिए ये एक भी बहुत है। तो कभी गिना ना करें लोगों को, तोला करें कि किसका ईमान कितना है। खैर, वापस आ रहे हैं आप, सफ़र वापस का। करण मनाजिल एक जगह है, रास्ते में आती है। वहाँ पहुँचे तो आपने अपने ऊपर बादल का एक साया देखा, जिब्राइल थे और उनके साथ पहाड़ों का फरिश्ता था। जब आपने सर उठाया तो जिब्राइल ने आपको पुकारा और कहा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ने आपके पास पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है, अगर आप हुक्म दें तो ये इन दोनों पहाड़ों को यूं पीस दे कि इसके बीच में जो लोग हैं वो बिल्कुल पिसके रह जाएं। यानी इन्होंने आपके साथ इतना बुरा सलूक किया है और अल्लाह के नबी के साथ इतना सलूक करना, ये तो अल्लाह के अजाब को बुलाने वाली बात है, तो क्या हम ऐसा करें? और अख्शबैन के अल्फाज आते हैं दो पहाड़ों के लिए, मक्का के दो पहाड़ अबू कैस और इसके सामने वाले पर ये लफ्ज़ बोले जाते थे। तो आपने क्या कहा? हाँ, मारो इनको, इन्होंने मेरी कदर नहीं की, मुझे खाना नहीं पूछा। और आपको तो सफ़र कितना मुश्किल होता है, और उसके बाद तो इंसान का दिल चाहता है कि रेस्ट करे, लेकिन आपने कहा नहीं, उम्मीद है कि अल्लाह इनकी पुश्त से एक ऐसी नस्ल पैदा करेगा जो सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करेगी और इसके साथ किसी को शरीक न ठहराएगी। और ऐसे ही हुआ। कौन आया ताइफ पे से? मोहम्मद बिन कासिम। वहाँ से वो बच्चा निकला और कहाँ उसने आके सिंध फतह किया। आज अगर मैं और आप एक आज़ाद सिंध में सांस ले रहे हैं ना, तो ये सफ़रे ताइफ का सब्र है। याद रखिए, आज हम मुसलमान अगर अपने दीन पे जमने का सब्र कर लेंगे ना, इसका फल हमारी नस्लें खाएंगी, हमारे बच्चे और हमारे पोते, नवासे और नवासियाँ, और इसी तरह जो भी आगे नस्लें आएंगी वो कहेंगी कि ये हमारे अम्मी अबू ने उस मुश्किल वक्त में सब्र करके दीन पे जमे रहे थे ना, कुरान पे डटे रहे थे ना, रस्म और रिवाज पे डट गए थे, इस्लाम को पकड़ा रखा था, देखो आज हमारे लिए काम करना कितना आसान है। देखिए, एक नस्ल जब एक काम पे स्टैंड ले लेती है तो दूसरी नस्ल के लिए वो काम आसान है। जैसे आज से 20-25 साल पीछे से कुछ मुस्लिम सिस्टर्स ने स्टैंड लिया तो अब हिजाब इतना बड़ा इशू नहीं दिखता, ले लिया। आज के दौर का इशू निकाब बना हुआ है तो आप और मैं स्टैंड ले लेते हैं, तो अगली नस्लों के लिए निकाब करना मुश्किल नहीं। जो माँ हिजाब करती है उसकी बच्ची को कभी मुश्किल नहीं लगता हिजाब करना। तो जो माँ एक क्राइटेरियन दे देती है, अगलों के लिए रास्ते खोल देती है। तो अगर आज हम खुद दुनिया में रंगना चाहते हैं ना, तो सोचे हम अपनी नस्लों के आगे कितने कांटे बीज रहे हैं। लानत करेंगे हम पे कि ये क्या हमारे माएँ ऐसी ज़िंदगी गुजार गई हैं, अब हमें मुश्किल में डाल रही हैं। बहरहाल, अल्लाह के नबी को जब ये मदद के ऑफ़र हुई, कबूल तो नहीं की लेकिन दिल से गम हट गया। पता किस बात का गम था और क्या हट गया? कि अल्लाह को मेरा ये सफ़र पसंद आया, ये बहुत बड़ी बात है। तसल्ली, तस्कीन कि आपका अजर ज़ाया नहीं हुआ। वापस आए नहला नाम के एक जगह पे, जब आपने स्टॉप किया, चंद दिन वहाँ रहे, अल्लाह ने जिन्नों की एक जमात भेज दी। अपने साथियों के साथ आप फजर की नमाज़ पढ़ रहे थे, उस जमात ने कुरान सुना, तिलावत ख़त्म हुई, ये अपनी कौम के पास दाईये दीन बन कर गए, उनको अल्लाह के अजाबों से डराया, ईमान ले आए। अल्लाह के नबी के बारे में इनको कुछ पता नहीं था, फिर जब उनको पता चला तो ये सब मुसलमान हो गए। सूरत अलअहकाफ़ और सूरत जिन में इसका तज़किरा है। चंद रोज़ के बाद अल्लाह के नबी नाहला से मक्का आ गए और आपको अल्लाह ताला की तरफ से कुशादगी और फराही की उम्मीद थी। कुरैश की तरफ से शर और गिरफ्त का अंदेशा भी था। आपने एहतियात पसंद की, मक्का के करीब पहुँच कर हिरा में ठहर गए। अहनस बिन शुरैक के पास एक आदमी भेजा कि वो आपको पना दे। मगर उसने माजरत की कि वो हलीफ है, पनाह नहीं दे सकता। यानी आपको डर था कि आप वापस आकर फिर कहीं हालात ख़राब ना हो, लेकिन आपको भी कोई इस किस्म की सिक्योरिटी ना मिली। सुहैल बिन अमर के पास पैगाम दिया, उसने भी माजरत की क्योंकि उसका ताल्लुक बनु आमिर बिन लुई से है। यहाँ देखिए कि कबीलों की मोहब्बत कितनी शदीद है। बाज़ लोग चाहते हैं दीन के काम में आपके मुआविन बने, लेकिन कहते नहीं, वो हमारे घर वाले नाराज़ हो जाएंगे, हमारा ख़ानदान के कहीं इन्होंने दर्स रखा लिया। अच्छा नहीं, ये हम नहीं कर सकते। बिल्कुल यही सिचुएशन यहाँ दिखती है, यानी ख़ानदानों की वजह से अल्लाह के नबी की दावत में शरीक नहीं हो सके। इसी तरह कुछ और नाम भी आप पढ़ लें, उसकी हमें इस वक्त इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन बहरहाल मुतम नाम के एक शख्स ने आपको कहा कि ठीक है आप चलिए, आपको अपने बेटों के साथ हथियारों के साथ आपने बुलवाया, मस्जिद हराम में आए, खाना काबा का तवाफ़ किया, दो रकत नमाज पढ़ी। यहाँ से देखिए सफ़र से वापस आने के आदाब भी हैं, इतनी थकन तकलीफ़, लेकिन आते ही अहराम में गए, और किसी भी मस्जिद का ये हक होता है कि आप वहाँ जा के दो नफिल पढ़ें। फिर अपने घर गए, पहले अल्लाह के घर गए फिर अपने घर गए। हम सफ़र से थके हो, कहते हैं पीछे हो जाओ नमाज़ पढ़ें। आप देखिए मर्द गाड़ियाँ कहीं कहीं रोक, मैकडोनल्ड पर रुकवाएँ बच्चे रोक लेते हैं, वॉशरूम यूज़ करना है बीवियों को रोक लेते हैं, मस्जिद के लिए नहीं रोकते। अल्लाह की पनाह के मस्जिद जाएं, नहीं अब घर जाके पढ़ेंगे, थके हुए हैं इकट्ठी कर लेंगे। ये चीज़ें इंसान का किरदार मुतय्यन करती हैं। बहरहाल मुतम ने कुरैश में ऐलान किया कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह दी है और अब आप इनको कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ से आप उन हालात की तरफ देखें कि क्या सख्त हालात थे कि जिसमें लोगों की पनाह लेनी पड़ती थी, अदरवाइज़ तो किसी वक्त भी अल्लाह के नबी को ख़त्म कर दिया जाता, या ऐसे जैसे आज के दौर में कोई पुलिस की कस्टडी में आ जाए। तो यहाँ आप देखिए कि आपका ये सफ़र पूरा हुआ,